मेरे स्नेही मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 8 जनवरी 2021 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार के इस डेली ऑडियो लेक्चर की शुरुआत में आप सबके प्रति एकेडमी की पूरी टीम की ओर से मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करने से कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि क्या बात हो गई, हो सकता है कि आप न जानते हों और ज्यादा उम्मीद यही है कि आप नहीं जान रहे होंगे। दरअसल दोस्तों बात यह है कि कल हमारे यूट्यूब चैनल ने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को छू लिया है। 10 लाख सब्सक्राइबर और डेफिनेटली यह जो हो सका है वह केवल आप सबके सहयोग से, आप सबके स्नेह से, और यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप सबके सम्मान की वजह से ही हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ ये अपेक्षा भी करता हूं कि आप सबका इसी तरह से हमारी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सहयोग मिलता रहेगा। इसी के तहत एक छोटी सी अपील है कि अभी हम लोगों ने YouTube में आपने देखा है कि ज्योग्राफी पर एक दो लेक्चर्स डाले हैं, कुछ दूसरे विषयों पर भी डाले हुए हैं। इस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आप सबकी मिल रही हैं और प्रतिक्रियाओं के केंद्र में जो मुझे सबसे बड़ी बात दिखाई दे रही है, जो अपील कर रही है और जो एकेडमी का उद्देश्य भी था वो ये कि विषय को बहुत अच्छे से समझाया गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं, हमारी क्षमताएं बढ़ रही हैं, इस तरह के कमेंट्स आप सबके पढ़ने को मिल रहे हैं। दोस्तों यहां मेरी एक छोटी सी अपील है और सच बात यह है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इनसे फायदा हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मित्रों तक भी इसे पहुंचाएं, इसे शेयर करें, इसके बारे में बताएं। यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो अदरवाइज बिल्कुल भी मत करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिससे मुझे लाभ हो रहा है मुझे चाहिए कि मैं अपने इस लाभ के बारे में दूसरों को भी बताऊं या दूसरों तक यह लाभ पहुंचाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि जो प्रेम और जो सहयोग आप सबका यूट्यूब चैनल, हमारी यूट्यूब चैनल को मिलता रहा है वह आगे भी मिलता रहेगा। फ्रेंड्स शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आपको कल एज इट इज मिलेंगी। साथ ही योजना के 2 आर्टिकल्स मिलेंगे, कुरुक्षेत्र के भी आपको 2 आर्टिकल्स मिलेंगे और एक वीकली क्वेश्चन मिलेगा जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर आप सबको अभ्यास के लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स मुख्य विषय के रूप में मैं अमेरिका में लोकतंत्र, इस विषय पर आप सबसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आपने रेडियो न्यूज में सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के छोटे से हिस्से को बकायदे राष्ट्र को समर्पित किया है। वो हिस्सा क्या था, उसका नाम क्या है, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। देखिए मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बताता हूं कि आपके अंदर ये क्षमता पैदा हो सके कि जब कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें हमारे लिए क्या जरूरी है, यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से क्या क्या जरूरी है और साथ ही क्यों जरूरी है, तभी आप वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसे अपने दिमाग में रख पाएंगे। तो यहां जो इंपॉर्टेंट है वह है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, हम यहां वेस्टर्न को भी हटा देते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यहां नाम है वेस्टर्न, तो हम वेस्टर्न को भी हटा देना क्योंकि हो सकता है कि जब वेस्टर्न की बात है तो ईस्टर्न भी हो, नॉर्दर्न भी हो, सदर्न भी हो, वी डोंट नो। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए अगर आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन आप सिलेबस को तब तक नहीं समझ सकेंगे जब तक कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ना देख लें, तो सिलेबस में बकायदे जो ढांचागत संरचना का विकास ये दिया हुआ है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है अपने देश के आर्थिक विकास के लिए और ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये उसी का एक हिस्सा है, तब फिर आपको लगेगा नहीं ये तो चूंकि आधारभूत संरचना का एक हिस्सा है तो ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने को अपडेट कर सकें। तो फिर अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यह कि अगर आपको तैयारी करते हुए कुछ समय हो गया हो तो फिर बकायदे इस टॉपिक को उठाना चाहिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कि ये क्या है, अगर आपको मालूम नहीं है तो। अगर आपकी तैयारी में ये बात आ चुकी है तो बात खत्म होगी, थोड़ा सा चाहें तो आप रिवाइज कर लें। अब आप देखें कि शब्द है डेडिकेटेड, यानी कि किसी को डेडिकेट किया हुआ, समर्पित किया हुआ, यानी कि उसी के लिए विशेष। हिंदी न्यूज में इसके लिए विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है, और फ्रेट के लिए मालवाहक शब्द का प्रयोग किया गया है, मालवाहक, विशेष मालवाहक गलियारा या रास्ता, यानी कि यह एक ऐसा रास्ता होगा, एक ऐसा गलियारा होगा जिसमें केवल विशेष मालवाहक गाड़ियां चल सकेंगी। अब हम कहते हैं कि विशेष मालवाहक गाड़ियां, तो ये तो ट्रक भी हो सकते हैं, तब यहां आपको दिमाग में रखना होगा कि नहीं नहीं ये रेल गाड़ियों के लिए है, मालवाहक रेल गाड़ियों के लिए, उसी को डेडिकेटेड, मतलब इस पर केवल मालवाहक रेल गाड़ियां ही चल सकेंगी। पूरे देश में लगभग 3300 किलोमीटर का इस तरह का रास्ता बनाया जा रहा है, उसका जो छोटा सा हिस्सा बना है उसे ही कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। अब जब बनाया जा रहा है तो इसे कोई ना कोई तो बना रहा होगा, कोई कंपनी बना रही होगी, तो रेलवे मंत्रालय ने अपनी ही कंपनी बनाई है जिसे आप पब्लिक सेक्टर यूनिट कहेंगे, क्योंकि वो सरकार की कंपनी है। और उसका नाम क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो है ही है, इसका नाम है, याद रखना बड़ा सरल हो जाता है थोड़ा सा अगर आप रुक करके धैर्य के साथ याद करें और समझने की कोशिश करें तो। तो इस कंपनी का नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम हो गया। देखिए इस तरह के नाम आपको कहां मदद करेंगे, हो सकता है प्री में मदद ना करें लेकिन मेंस में मदद करेंगे, क्योंकि आप बकायदे उसमें नाम लिखकर आ सकेंगे। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, आप वेस्टर्न कॉरिडोर को देख लेते हैं, ईस्टर्न कॉरिडोर को देख लेते हैं कि ये क्या है। तो आपको पता लगता है कि जो वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर है ये लगभग 1500 किलोमीटर है, ये यूपी में एक जगह है दादरी जो बिल्कुल हरियाणा से सटा हुआ है, तो दादरी से ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है हमारा पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में, वहां तक बनेगा। तो कहां से, यूपी से शुरू होकर के ये मुंबई तक बनेगा, और इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र कह लीजिए, ये सब का सब आ जाएगा। बकायदे नक्शे पर आपको देखिए तो आपको मिल जाएगा, वहीं से रास्ता गुजरेगा। इसके बाद आपके सामने ईस्टर्न कॉरिडोर है। अब ईस्टर्न कॉरिडोर कहां से शुरू होगा, तो ईस्ट साइड से, ये वेस्ट को ईस्ट से जोड़ता है, ये पंजाब में जो लुधियाना है, लुधियाना की एक जगह है वहां से शुरू होता है, और वेस्ट बंगाल की एक जगह है वहां जाकर के खत्म होता है। तो जब ये पंजाब से शुरू होता है तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होता हुआ वेस्ट बंगाल तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये दो कॉरिडोर है। इस तरह से थोड़ा सा आप इसके बारे में देख लीजिए, समझ लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, और आप यूं कह लीजिए कि एक अच्छी समझ अपने खजाने में डाल लेंगे। फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बारे में मैं ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं हूँ। दैनिक भास्कर ने उस रिपोर्ट पर लिखा भी है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप देख लेंगे। रिपोर्ट यह है कि जो हमारे यहाँ वृद्ध जन हैं उनके स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर देश में पहली बार अध्ययन कराया गया है, और उस अध्ययन की रिपोर्ट हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने जारी की है, उसमें कुछ बहुत अच्छे आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों को आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि आंकड़े आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। देखिए सीधे सीधे ये आपके सिलेबस में नहीं है वृद्ध जन, लेकिन वीकर सेक्शन शब्द है आपके, है ना, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए देश क्या करता है, तो उसी के तहत विकलांग आ जाते हैं, जिन्हें दिव्यांग कहा जा रहा है, माफी चाहूंगा विकलांग शब्द मेरे मुंह से निकल गया, दिव्यांग जन आते हैं, और बच्चे आ जाते हैं, इसी के तहत आते हैं, तो वृद्ध भी उसी के तहत आते हैं। और मेंस में एक साल वृद्धों पर पूछा भी गया था कि उदारीकरण का क्या प्रभाव वृद्धों के जीवन पर पड़ रहा है, इस तरह का कुछ प्रश्न मुझे ध्यान आ रहा है कि पूछा गया था। तो अगर आंकड़े मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, और चूंकि पहली बार इस तरह से सर्वे कराया गया है तो ये आंकड़े हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां बता करके दोहराने का कोई मतलब नहीं है, आप आंकड़े नोट कर लेंगे, क्योंकि वृद्धों की संख्या धीरे धीरे देश में बढ़ती चली जा रही है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो सोचिए कि भारत की जो प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा थी, एवरेज एज, वो 31 ईयर्स थी, और आपको मालूम है कि अब हम लगभग 65-68 साल तक पहुंच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वृद्धों की संख्या का बढ़ना स्वाभाविक है। तो दोस्तों इसे आप देख लेंगे, अगर कभी समय मिला तो हम लोग इस इशू पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मुख्य विषय मैंने चुना है वो है अमेरिका में लोकतंत्र। ये विषय मैंने क्यों चुना है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आज के अखबार, सच पूछिए तो, इस खबर से भरे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि अमेरिका में जो संसद है उस पर हमला हुआ है, कह लीजिए उसके अंदर हमला हुआ है, जिसमें चार लोग मारे गए हैं। देखिए वहां जो शब्द आया है, जो कैपिटल, कैपिटल का मतलब है वो जो पार्लियामेंट का कैंपस है उसको कैपिटल कहा जाता है, और ये जो कैपिटल है, ये जो भवन है, ये कैपिटल हिल पर है। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कैपिटल हिल पर जो कैपिटल नामक संसद है उसके साथ ये घटनाएं हुई हैं। और यहीं पर जो अमेरिका के दो सदन हैं, जैसे हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा है, आप देखिए कि हमारी एक ही पार्लियामेंट की बिल्डिंग में है, वहां भी दोनों सदन इसी में हैं। जो उनका जो हमारा जो राज्यसभा है उसकी तरह उनका जो अपर हाउस है वो सीनेट कहलाता है, और जो लोअर हाउस है वो प्रतिनिधि सभा कहलाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे यहां लोकसभा के बराबर होता है। तो दोनों सदन यहां ही है, ये लगभग 1800 में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको मालूम है कि जो अमेरिका है, अमेरिका को जो आजादी मिली है, आजादी मिली क्या, इन्होंने ली है, बकायदे युद्ध हुआ था ब्रिटेन के साथ, और 1776 में 4 जुलाई 1776 को बकायदे 13 जो उपनिवेश थे, अमरीकी उपनिवेश जिस पर ब्रिटेन का शासन था, उन लोगों ने सामूहिक रूप से अपनी आजादी की घोषणा की थी 4 जुलाई 1776। आपको मालूम है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी इसके 3 साल बाद हुई थी, लेकिन लोग फ्रांस की क्रांति को याद करते हैं, अमेरिका की क्रांति को याद नहीं करते हैं। इन लोगों ने मिलकर के ब्रिटेन की सेना के साथ युद्ध किया था, जॉर्ज वाशिंगटन सेनापति हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर फिर ये जो कैपिटल है यहाँ का वाशिंगटन सम्मान में उसका नाम वाशिंगटन रखा गया। याद रखिए कि उसका जो नाम है वाशिंगटन डीसी है, डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का मतलब ये नहीं कि वाशिंगटन कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट में है, इसे भी आप स्पष्ट कर लीजिए, नहीं, ये एक तरह से यूनियन टेरिटरी है, जैसे हमारे दिल्ली का कुछ हिस्सा है ना, हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इस तरह से वाशिंगटन सीधे सीधे एक यूनियन टेरिटरी है। तो फिर आप कहेंगे कि फिर ये डीसी कोलंबिया क्यों नाम रखा गया। दोस्तों आपको मालूम है कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी, याद करने की कोशिश कीजिए, कोलंबस ने इसकी खोज की थी, तो उनके सम्मान में ये नाम रखा गया है डीसी, राइट। ये कुछ बातें थी, कुछ तथ्य जो आपको क्लियर होने चाहिए। और दोस्तों अब अंत में एक छोटी सी बात कहूंगा, वो ये कि जो अमेरिका है शुरू से ही, देखिए लोकतंत्र तो वहां आ गया, ब्रिटेन से जैसे उपनिवेशवाद को समाप्त किया उसने लोकतंत्र की स्थापना की, पूरी की पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, हालांकि सबसे पुराना जो लोकतांत्रिक देश है वो ब्रिटेन है, लेकिन जो जाना जाता है वो अमेरिका है। विश्व शांति की बात आए, विश्व व्यवस्था की बात आए, लोकतंत्र की बात आए, तो शुरू से अमेरिका उसका बहुत ही जबरदस्त समर्थक रहा है। अच्छी बात अमेरिका के साथ ये रही कि इसके उपनिवेश नहीं रहे, जैसे यूरोपीय देशों के तो बड़े उपनिवेश रहे, फ्रांस, इंग्लैंड, आप देखिए कि हॉलैंड, स्पेन, ये सब उपनिवेश वाले रहे, इन्होंने दूसरे देशों पर शासन किया, अमेरिका के साथ ऐसा नहीं हुआ। और चाहे आप फर्स्ट वर्ल्ड वार ले लीजिए, आप सेकेंड वर्ल्ड वार ले लीजिए, अमेरिका उसमें सीधे शामिल नहीं होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार में तो बहुत बाद में जा जाकर के वो शामिल होता है, और शुरू से वो लगातार इंग्लैंड जैसे देशों पर, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वार पर तो बहुत ज्यादा दबाव डालने लगा था कि भाई जिन देशों को आपने गुलाम बना रखा है उन्हें आप आजाद कीजिए। लीग ऑफ नेशन आया, फिर बाद में यूएनओ आया, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो डेमोक्रेसी के लिए अमेरिका एक तरीके से सिंबल है। आपको मालूम है कि जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहां है, अमेरिका में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन में है। तो ऐसे देश में अगर संसद पर इस तरीके से हमला होता है तो वास्तव में अमेरिका की छवि को बहुत ज्यादा यह घटना धूमिल करती है, धूमिल ही नहीं करती है बल्कि दुनिया के देशों को चिंतित भी इसने कर दिया है। दोस्तों आज अखबार इस घटना से भरे पड़े हैं, एडिटोरियल भी लिखे गए हैं, इस पर आर्टिकल्स भी हैं, कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे, अपने अपने ढंग से इसके आप पॉइंट्स लेना शुरू कर दीजिए। अगर कोई बहुत ही कॉन्क्रीट बात मुझे लगी तो फिर हम लोग कभी इस पर फिर से बात करेंगे। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, शोभित सिंह भारद्वाज, नितेश शर्मा, जिज्ञासा मीना, अंकुश शिमला हिमाचल प्रदेश से, विजेता कुमारी वर्मा बोकारो झारखंड से, निधि मीना उदयपुर राजस्थान से, और अनामिका विमल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यही समाप्त करता हूँ। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।